ओम शांति।
संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता। भगवान हमको अपने दिल तख्त पर बिठाता। इसी युग में हमने पाया है प्रभु के दिल का आसन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से प्रभु ने अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाता, बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाता। नजरों से है उठाता, पलकों में है सुलाता। पुचकार प्यार पावन, पुचकार प्यार पावन, प्रभु का दुलार प्यारा। पुचकार प्यार पावन, प्रभु का दुलार प्यारा, ऐसा कहाँ मिलेगा वहां देवताओं द्वारा, ऐसा कहाँ मिलेगा वहां देवताओं द्वारा। आंचल में सारा जीवन भगवान के जिया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। क्या है अतीन्द्रिय सुख? सुनिए, क्या है अतीन्द्रिय सुख? पूछो गोप गोपियों से, मजा क्या प्रभु मिलन में हम राजयोगियों से। नजरें रहें ये हम पर, हर पल रहे नजारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा। बेहद का प्यार प्रभु ने हमको अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। सर्वप्रथम आप सबको रक्षाबंधन पावन पर्व की, निर्बंधन बनाने वाले बंधन में बंधने की, संपूर्ण ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न करने वाले इस महापावन पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां स्वीकार कर लें। सभी इस भट्टी में उपस्थित आप सब ब्राह्मण कुलभूषणों का आज की मुरली के अनुसार सभी पवित्र जीवन के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं का, मैपन को प्रभु के अर्पण करने वाली ब्राह्मण आत्माओं का, संपूर्ण समर्पण होने वाली आत्माओं का, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं का, अचल अडोल स्थिति में रहने वाली आत्माओं का, और बुद्धि की लाइन को क्लियर और क्लीन रखने वाली आत्माओं का, और इसके साथ सच्चे दिल वाली आत्माओं का, और इंद्रप्रस्थ निवासी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है मधुबन की इस पावन भट्टी में। आज का विषय है अचानक, एवर रेडी, और बहुत काल का अभ्यास। हम सब जब से ब्राह्मण बने हैं ईश्वरीय गोद में आए हैं, बाबा की वाणी को सुनते आए हैं, तो ये कान में शब्द गूंजते रहे अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक तो आप सब जानते हैं, हम सब त्रिनेत्री आत्माएं हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें सारे काल का, सारे लोक का पूरा पता है। सबको पता है, सबको पता है, सब त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ऐसा लगता है बाबा कह देता है मैं तो हूं नहीं, ऐसा तो नहीं, सब है। लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए, सभी हैं। बहुत बचा, एक बार अपने लिए अभिनंदन कीजिए। त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी का अर्थ यह है कि हर काल के राज को जानने वाले, बाप समान, कभी हलचल में ना आने वाले, हमेशा एवर रेडी, कभी हलचल में ना आने वाले, अचानक के पाठ में पक्का होने वाले। बाबा की एक वाणी चली थी, यह है 13/3/97 की वाणी, 13 मार्च 1997। 11 मार्च को दादी चंद्रमणि दीदी ने शरीर छोड़ा था और हम तो पूरा साथ में रहे हैं, वो दृश्य आता है। 13 तारीख को जब भोग लगा और दादी जी, गुलजार दादी जब संदेश में, ट्रांस में गई भोग लगाने के लिए, तो देखा बाबा बैठे हैं अकेले। तो दादी ने पूछा बाबा आप अकेले बैठे हैं और कोई नहीं है? इतने में इमर्ज किया दादी को, दादी चंद्रमणि सामने आई। और मुझे याद है यहां पर भी और ओम शांति भवन में दादी बहुत हंसती थी, बड़े खुल करके ऐसे हंसती थी, बड़े खुले दिल से, दिल डोल बड़ी थी। जब अकेली होती थी तो लगता था कि वाह क्या बात है, बादशाह दिखाई पड़ती थी। और जब दादियों के बीच में होती थी, इतना छोटी होकर के बैठती थी, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये दादी जी की विशेषता थी। और दादी ये गीत सुनाया करती थी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी, ये दादी गाया करती थी। वहां भी देखा तो लगा ही नहीं कि दादी को, गुलजार दादी को यह लगा ही नहीं कि दादी को जरा भी भान है कि मैं यहां आ गई हूं। तो पूछा दादी आप यहां आ गई? और बाबा से कहा बाबा कुछ इशारा नहीं मिला अचानक, ही कैसे हो गया? तब बाबा ने कहा बच्ची ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए क्या बताया, क्या और दादियां गईं तो बताया, क्या कुछ पहले बताया जाता है क्या? मालूम है हमें सब, लेकिन ये नहीं पता है कि अगले पल ये होने वाला है, इसको अचानक कहते हैं। तब से अचानक की बात बाबा ज्यादा कहते रहे, पहले भी कहते रहे हैं लेकिन तब से बाबा कहते हैं। तो दादी को पूछा कि दादी आपको पता है आप यहां आ गई हैं? कहा मैं तो जब गुलजार तुम जाती थी वतन में तो मैं सोचती थी कि ये कैसे जाती हैं, वहां जाके क्या करती हैं, कैसे बाबा इनको मिलता है, मुझे अनुभव कब होगा, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादी को ये पता ही नहीं लगने पाया कि मैं वतन में आ गई। ये थी स्थिति अचानक में पास होने की, इसको कहते हैं एवर रेडी। एवर रेडी जो हमेशा, हर घड़ी, हर पल, हर बात के लिए तैयार रहे। पहली निशानी है जो अचानक के पेपर में पास होंगे कि उनके मन में क्वेश्चन नहीं होगा, क्या कैसे ऐसे हो गया, क्या क्यों कैसे कब कहां क्यों, ये सब कूकू वाली बात नहीं होगी, कोई नहीं क्वेश्चन, फुल स्टॉप। ये अचानक के पेपर में पास होने वालों का पहला लक्षण है। दूसरा, अचानक के पेपर में पास वो हो सकते हैं जो संपन्न है, जो संतुष्ट है, जो भरे हुए हैं, क्योंकि जो कम होता है, खाली होता है, वो छलकता ज्यादा है, वो हलचल में ज्यादा आता है, और जो संपन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वो छलकते नहीं, भरे होते हैं, लबरेज होते हैं, लबालब। हम सब भी ज्ञान से, याद की गहराइयों से, याद के अनुभवों से, पवित्रता की धारणा से और सेवा में संतुष्टता और प्रसन्नता से हम सब भरे, और यही भरपूरता की स्थिति वर्तमान समय पर आने वाले अचानक के पेपर में हमें पास कराएगा। तो ये हमेशा सोच के रखिए कि अचानक के पेपर में पास होने के लिए अपने को संपन्न रखना है, और उसका एक बहुत बड़ा अभ्यास है कि जितना जितना हम देह और देह के भान से न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास में मस्त रहेंगे, मगन रहेंगे, उतना ही अचानक के पेपर में पास हो पाएंगे, वही एवर रेडी भी रहेंगे अशरीरी बनने का अभ्यास। हमारे में से कई भाई बहने ये सुनते हैं बहुत दिनों से, अशरीरी बनना, शरीर से निकलना है, वतन में जाना है, बाबा के पास बैठना है, देह भान से मुक्त रहना है, समझ नहीं आती कि ये क्या होता है, सुना है लेकिन इसके अनुभव में रहना है। यही एक सब्जेक्ट वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यही पुरुषार्थ भी होना चाहिए। कई भाई बहने पूछते हैं कि भाई जी वर्तमान समय, अभी अभी हमको एक भाई मिले थोड़ी देर पहले दुबई के, तो बोला भाई जी वर्तमान समय पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, क्या लगता है? वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी, अपने एक एक इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संस्कार पर पूरा नियंत्रण हो, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, संस्कार हमारे हमको हलचल में ना लाएं, संस्कार अपने दैविक संस्कार इमर्ज करें। याद करें कि 2500 वर्ष तक 2500 वर्ष तक हम सब देवी देवता बनकर अखंड सृष्टि पर एक छत्र संपूर्ण पवित्रता से, संपूर्ण पावन सृष्टि पर संपूर्णता के साथ राज्य करते थे, संपूर्ण पावन थे। अपने उस स्वरूप में आइए, उसको उसमें रहिए, कुछ पल रहिए। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आज आपको एक ऐसी चीजें बता रहा हूं, ये जो प्रैक्टिकल में लाने की चीजें, घरों में रहते हैं आप सब, एक दिन, और वो जल्दी हो, कोई दिन की तलाश नहीं करनी है, एक दिन छुट्टी ले लें, छुट्टियां बहुत होती हैं, और एक दिन पूरा कमरा बंद करके, भोजन भी छोड़ दो तो कोई हर्जा नहीं, और लेना हो तो ले लें, लेकिन वो भी ख्याल ना रहे, एक दिन पक्का सुबह से लेकर शाम तक जम करके सतयुगी दुनिया में चले जाओ और डांस करो, दरवाजा बंद करके, स्वर्ग हमारा मन भावन होगा, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख क्या है, लेकिन सतयुग के सुख में ऐसे चलें जो सतयुग में चल रहे हैं, ऐसे हमारी बैठक कैसे होगी, वो कुल थोड़ा जिए, जीवंत लाएं। जब तक उसको अपने स्वरूप में नहीं लाएंगे, वो संस्कारों की इमर्ज नहीं करेंगे, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक ये अनुभूतियां कब होंगी। संगमयुक्त तो अनुभव का है, प्रयोग का है, जो हमको मिला है उन शक्तियों का प्रयोग करें। तो पहला है अचानक के पाठ में पक्का हो जाए, इसके लिए मन पर यहां पर कभी भी सिलवट ना पड़े। ऐसे बैठे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो जैसे कोई दूसरे ही लोक में है। बाबा को भंडारी भोली दादी जाके मम्मा कहती थी, मम्मा भोजन नहीं है, दोपहर का समय हो गया है, आज बनाएं क्या, क्या खिलाया जाएगा। बार बार जाती रही मम्मा के पास, मम्मा वो भी मस्ती थी मम्मा की अपनी, मम्मा को भी चिंता नहीं थी, बाबा का काम है, बाबा जानता है, क्या चिंता करनी। लेकिन देखते देखते जब दो तीन बार आई तो मम्मा ने बाबा को कहा, बाबा ऐसी स्थिति, बाबा जिसे कान तक जू नहीं रेंग रहे, कुछ भी हुआ ही नहीं, बाबा ऐसे मस्ती में बैठा। बच्ची चिंता क्या करनी, जिसका भंडारा है वो बैठा है ना, वो भंडारी बैठा है, भोला भंडारी। मामा ने इतना सुना, मामा वापस आई, ठीक 12 बजे मनी ऑर्डर आता है, वो दिया जाता है, और फिर आटा या जो भी चीज थी वो खरीदा जाता है और सबको भोजन मिलता है। वो एक दिन की परीक्षा थी यज्ञ में, उसमें जो कमजोर थे हलचल में आए, लेकिन किसी को और हलचल हुआ ही नहीं। जो ऐसे पेपर में पास हुए इसको क्या कहेंगे, जो होता है अचानक ही होता है, कोई बता के किसी की मौत नहीं आती। आज की मुरली में बाबा ने कहा, धरती हिली गुजरात में कच्छ भुज में, इतना बड़ा तांडव हो गया, लेकिन बाबा ने कहा धरती हिली, आपकी दिल भी तो नहीं हिली, आप तो नहीं हिले, परीक्षा हुई, हलचल में तो नहीं आए। हमें याद है अब्दुल कलाम जी भी आए थे ओम शांति डायमंड हॉल में, वहां दो भाई दूसरी तरफ से दौड़ करके आए, बाबा के अंदर में नशा रहा होगा, इतना तेज से दौड़ के आए कि जो वहां स्टेज पर रखवाली करने के लिए भाई बैठे थे वो भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ, दौड़ के आ गए और बाबा के पास आ गए एकदम। तो सब दौड़ पड़े कि बाबा के पास कैसे पहुंच गए, वो तो बाबा के लगन लगाने वाले थे, कुछ नुकसान नहीं करने वाले थे, लेकिन मिलने की इतनी इच्छा थी बाबा के पास पहुंच जाऊं, वो दौड़ पड़े। और जब पहुंच गए तो सबने पकड़ा, तीन चार भाइयों ने उठा के दोनों को फिर अलग लेकर गए, और बाबा ऐसे दृष्टि दे रहा है, देखता जा रहा है, मुस्कुरा रहा है, बाबा की ऐसे भी नजर नहीं गई, बाबा ऐसे देख रहे। फिर बाबा मुरली सुनाते हैं, हलचल में तो नहीं आए, हलचल में तो नहीं आए, क्या गजब का स्वरूप है। और यहां तो पल पल भर में जंगल की आग की तरह अफवाह फैलती है, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आता है तो मन करता है जल्दी मैं बांटूं, नहीं तो अंदर में पेट में ये होता है कि जल्दी सुनाऊं। समय के अनुसार अचानक के पेपर में पास होने के लिए अपने संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाने की आवश्यकता है। धैर्यवत याद में बैठते हैं, शरीर से अलग होने की ऐसी प्रैक्टिस हो, एकाग्रता की ऐसी गहरी प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे मैं शरीर में हूं ही नहीं। दूसरा अभ्यास हो, मैं इस संसार में हूं ही नहीं बाबा के पास, और जब बाबा के पास बैठ जाए और बाबा और मैं बैठ जाए तो हे राम, ये दुनिया बनी ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं, जैसे सृष्टि है ही नहीं, ग्लोब भी नहीं है, मैं और बाबा और कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं संपूर्ण एकाग्रता। जब हम याद में बैठते हैं, अभी आप सब बैठे थे, तो याद के लिए एक ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करें, अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लें कि हमारा शरीर सध जाए। शरीर पहले सधे, मोटा मोटा तो पहले काम करें, शरीर में जरा भी हलचल ना आए, कोई भी अंग हिले नहीं, आंखें भी हिलना बंद हो जाए, इतनी स्थिरता आ जाए कि जैसे लगे कि शरीर में सांसें भी नहीं आ रही, सांस लेकर गहरा, जैसे कि मैं अब शरीर में हूं ही नहीं। जब ऐसी एकाग्रता का अभ्यास हो तब संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि जब याद में बैठता हूं तो पौने घंटे एक घंटे तक याद की गहरे स्थिति में बैठता हूं, शुरू में सर्दी लगी है, जुखाम है, यहां गंगा बह रही है जमुना, लेकिन जब याद में बैठे शरीर को पता ही नहीं कि मुझे जुखाम भी है, मुझे भी नहीं पता है, सब वहीं वहीं रुक, शरीर पर पूरा कमांड, ऐसी स्वराज्य की स्थिति का निर्माण करना है। इसको कहते हैं अचानक के पेपर में पास होना। तो आज से हम जब याद में बैठें तो अपने शरीर को साधें। आप सब बैठे जैसे मैं बैठा हूं, देखिए कितनी देर से मैं बैठा हूं, पौने घंटे हो गए, एक घंटा हो गया, 7 बजे बैठे थे, अभी तक ऐसे बैठा हूं। बैठ सकते हैं आप सब, बैठे जरा, तो बैठ लें, जो बैठ सके ऐसे बैठे। ये योगी का आसन है जिसपे बाबा बैठते थे, 92 और 93 ईयर्स के होते बाबा बैठते थे, ये योगी का सिद्धासन है, ये है अर्ध पद्मासन, ये। और सामने देखें, सामने देखें, सामने देखें, बाबा को देखें, अपलक देखें, निर्निमेश दृष्टि से देखें, केवल देखें बाबा को, खुली आंखों से। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भिगोए हुए, भुलाए हुए। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। ऐसी स्थिति का निर्माण हो, पूरा कमांड हो, पहले मास्टर बनो अपने शरीर के, कर्मेंद्रियों के, अपने जीभ के, अपने जीभ का दिन भर की दिनचर्या में निरीक्षण करें। इसके लिए एकांत में एक घंटा अपने ऊपर ये करें, आत्मभिमानी बनने की, चल रहे हैं, खड़े होकर चल रहे हैं, यहां से निर्देश दें अपने कर्मेंद्रियों को, पांव को, पांव उठो, पांव उठो, पांव उठो, पांव उठता है, नीचे रखो, नीचे आओ, दूसरा पांव, दूसरा पांव, उठो, नीचे आओ, हाथ उठो, तब हाथ उठे, उठो और ऊपर और ऊपर और ऊपर, नीचे आओ, तुम उठो, आंखें उठो, सामने देखो, सामने देखो, कान सुनो, सुनो, ये एक एक कर्म इंद्रियों को डिमॉन्स्ट्रेशन देकर उनको चलाओ। जब तक अपने एक एक कर्म इंद्रियों पर इस तरह हमारा अनुशासन नहीं होगा, तब तक हमारी योजना सफल नहीं होगी। ये कर्मेंद्रियां बड़ी नाच नचा रही हैं, हम व्यर्थ में इनके गुलाम बन गए। यहां सुन रहे हैं लेकिन भोजन पे जाते हैं। अगर भोजन देखा, आज तो जलेबी मिल रही है, आज तो फलाना हलवा मिल रहा है, आज तो गुलाब जामुन मिल रहा है, तो देखो देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और जब वहां पहुंचते हैं तो अगर एक मिलता है तो मन करता है एक और मिल जाए, कितना अच्छा है। किसी को दे लिया, दो उसको मिल गई है, तो मुझे एक ही दिया है, इसने मुझे एक ही दिया, इनको तो दो मिल गया है, तो मन करता ले ले। कुछ लोग तो इंतजाम भी कर लेते हैं, चलो अभी खा लेते हैं और दोपहर को भी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे। लेकिन ये कहां, किसको हम धोखा दे रहे, किस लिए? हमारा मंतव्य क्या है और हमारा गंतव्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे लक्षण क्या है? एक एक चीज में पूरी पारंगत होनी चाहिए। जो चीज आपको नहीं खानी है या जो चीज आपको लगता है कि ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग पूछते हैं आपका फेवरेट क्या है, हमने कहा फेवरेट वगैरह कुछ है ही नहीं हमारा, अब दुनिया में फेवरेट रह ही नहीं गया, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं भूसा खा लूं, खा रहे हैं लेकिन फेवरेट कहो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हैं? कोई हॉबी है आपकी? कहो इस दुनिया में कोई हॉबी है ही नहीं, अब तो हॉबी यही है कि याद की मस्ती में सेवा में मगन रहना है, ये अंदर में होना चाहिए। तो ऐसे एकांत निकाल के एक दिन, मैं पहले भी अनुभव सुनाता रहा हूं, ये 86 के करीब की बात होगी, किचन में भोजन बनाते थे। मैंने भोली दादी को कहा कि दादी मुझे एक दिन भर्ती करनी है तो छुट्टी चाहिए। कहते अच्छा कहाँ जाना है? हमने कहा दादी कहीं और नहीं, ओम शांति भवन में भर्ती करना है। मैं पांडव भवन में, तो कहा अच्छा ठीक है। मैं गया वहां, ऊपर कोई थे नहीं तब, ऊपर है ऋषि गुफा, नीचे है हाथी गुफा, तो ऊपर जाके कमरे में पूरा एक दिन पूरा, मुझे याद नहीं कि मैं खाना खाने गया या नहीं गया, लेकिन सारा दिन लग गया। मैं सोचा रोज ही गड्ढा खोद रहा हूं, पानी तो मिल ही नहीं रहा है, तो एक दिन कुआं खोदने का निश्चय कर लिया, वो कुआं नहीं, आत्मविमानी बनने की, डेप्थ में जाने की। सारा दिन किया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ अनुभव नहीं हुआ, एक दिन अनुभव हुआ ही नहीं, सारा दिन अभ्यास किया। फिर दूसरे दिन हमने फिर दादी को कहा दादी एक दिन की और भी मोहलत चाहिए। कहा ठीक है, उधर गए, इधर दादी गई बड़ी दादी के पास, बोला कि वो तो भट्टी कर रहा है। कहा कहां? कहा दीदी यहीं ओम शांति भवन में। दादी ने मुरली के टाइम पर ही क्लास में सुना दिया कि देखो लगन हो तो कहीं दूर नहीं, अपने पास मधुबन में कितनी जगह है, कितना टेरेस है यहां पर, कितनी अच्छी जगह है, आप सबको करना चाहिए, देखो भट्टी कर रहा है। तो एक दो निकले और कहा कि आज तो दादी ने बोल दिया आप भट्टी कर रहे हैं। मैंने कहा लो अभी तो मैंने भट्टी जलाई भी नहीं, सुलगाई भी नहीं, धुआं भी नहीं निकला, मेरा नाम बाला पहले ही हो गए। फिर दूसरे दिन लगा, दूसरे दिन शाम तक खूब लगे रहे, दूसरे दिन शाम तक अजब अजब अनुभव होने लगे और ऐसा लगा कि अब कुछ आनंद आ रहा है। लेकिन देखते देखते दूसरा दिन बीत गया, मुझे लगा एक दिन और चाहिए, तीसरे दिन फिर छुट्टी ले लिया। और तीसरे दिन जो शाम तक मेरी स्थिति रही कि तीसरे दिन सवेरे ही 2:30 बजे जब मैं कॉन्फ्रेंस ऑफिस हॉल है वहां से जा रहा था बाबा के कमरे में, तो 2:30 बजे का समय सवेरे, और देखता हूं मुझे कोई होश नहीं कि कब मैं उठा, कब तैयार हुआ, कब आया, तो ऐसे देखता हूं कि कहीं शरीर छोड़ के अव्यक्त होके तो नहीं आया हूं, नहीं नहीं ये शरीर में हूं, ये ख्याल में आया। और यकीन मानिए तीसरे दिन का जो अनुभव रहा, तो जा सकते हैं हमारे लिए नहीं, ये आप अपने लिए बजा रहे हैं। ऐसे अनुभव कीजिए, जब तक कोई चीज के लिए जुनून ना हो, दृढ़ता, संकल्पों में एकाग्रता, दृढ़ता, लक्ष्य, फोकस, हमारा फोकस होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय कहता है अब गफलत के समय समाप्त हो गए, समय अंतिम समय पर है, इशारे बराबर मिल रहे हैं। इन सबके लिए, अचानक के लिए और एवरेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास हो। 1 मार्च 1999 की वाणी है, जिसमें बहुत काल के अभ्यास की बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, बहुत अच्छा कहा। बाबा कहते हैं चलो छोड़ दो, एवरेडी की बात छोड़ो, बाबा छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत काल का तो करो। जो अभी एक लंबे समय तक देह से अलग होने की प्रैक्टिस में नहीं रह पाते हैं, या अशरीर बनने का अनुभव नहीं होता है, या याद में बैठ के मिलन का अनुभव नहीं होता है, बाबा के साथ का निरंतर अनुभव नहीं होता है, याद की यात्रा की परसेंटेज अभी भी 2-4 घंटों से आगे नहीं बढ़ रही है, 8 घंटे तक भी नहीं हो रही है, समझ लें कि उनको अभी बहुत कुछ करना है। 8 घंटे तक की याद की यात्रा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 8 घंटे तक की याद की यात्रा में माना आपने कमाया और आपका काम चल गया, आपने लिए कमा लिया 8 घंटे तक। 8 घंटे से अधिक योग होने लगता है तब समझो हम किसी की देने की स्थिति में, और आने वाले समय में बहुतों को देना होगा। वर्तमान समय का पुरुषार्थ बाबा करते हैं, कहते हैं अपने लिए नहीं करना है, हमको तो भरपूर रहना है। आज की वाणी में भी था कि अभी तक जो किया वो अपने लिए किया, लेकिन अब औरों को भी आप समान बना पाओ। आज बाबा कह रहे थे कि पवित्र जो हमारी जो वाइब्रेशन है, अपना वाइब्रेशन, अपना वायुमंडल, अपना संग और अपने दिल की दुआएं, ये सब औरों को भी मदद करें, सहयोग करें। आपका सहयोग औरों को सहयोगी बने, तब जाके इसमें सफल होंगे। तो इसके लिए एक दिनचर्या का निर्माण कर लें। कैसे करेंगे? अपने लिए जो मैं प्रायः बताया करता हूं, आप सभी करेंगे उसको, कुछ छोटे छोटे टिप्स देता हूं, वो आपको बहुत मदद करेंगे। एक तो पहली बात, उठते ही सामने सवेरे पहले बाबा को देखें, और पहली दृष्टि में, जैसे बाबा ने आज वरदान में कहा, अमृत वेले बाबा के स्नेह से, अविनाशी स्नेह से अपने दिल को इतना भर लो कि किसी देहधारी के स्नेह की आवश्यकता नहीं। अगर थोड़ा भी भरा नहीं है, थोड़ी भी जगह खाली है, तो क्या होगा? कोई न कोई देहधारी का प्यार आकर्षण करता रहेगा। सवेरे उठते ही बाबा को देखें और अपने आप को भर लें बाबा से। जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। और दूसरा, नमस्ते कर लें बाबा से, और बाबा से नमस्ते तब तक करें जब तक पूरे होश में नहीं रहते, बाबा नमस्ते, तब तक पता नहीं लगा कि मैंने किया कि नहीं किया और किसको किया पता नहीं लगता है, काम चलाऊं कर लेते हैं। उसको करे चैतन्यता के साथ, किसको नमस्ते करें? सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा को बड़े प्यार से करो, बड़ी प्रसन्नता के साथ, ये पहली नजर का प्यार होना चाहिए। सारे दिन के लिए जैसे बोनस मिला है, मुझे आज का दिन मिला है, उपहार मिला है। हम अल्लाह लोग हैं, वतन में बाबा ने हमको उठाया, वतन में जगाया और वतन से मुझे वतन में नमस्ते कर रहा हूं। और दूसरी बात कि जैसे चारपाई से नहीं उतर रहे हैं, आप वतन से उतर रहे हैं। रोज दिनचर्या आप नीचे से ऊपर जाने की करते हैं, आज से बंद कर दे, अब ऊपर जाना ही बंद कर दीजिए तो क्या करें? ऊपर से रोज आइए नीचे, रोज अनुभव कीजिए कि वतन में हूं, बाबा के पास, बाबा ने उठाया, अब बाबा मेरे मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और ताज पहना रहे हैं जिम्मेदारी का, और कहते हैं बच्चे आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर तुम जाओ। और बाबा विदा करते हैं, बधाइयां देते हैं, शाबाशी देते हैं, शाबाश शाबाश बेटा जाओ फरिश्ते, और नन्हा फरिश्ता बन करके आप उतर रहे हैं। तो रोज चारपाई से न उतरिए, रोज वतन से, रोज ये अभ्यास हो कि मेरा अवतार हुआ है। नीचे से ऊपर अभी तक जाते रहे, कभी पहुंचे ही नहीं, और पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बस। अब आज से वतन में ही रहिए, वतन से आइए और फिर शाम को वापस वतन में, रात को चले जाइए। ठीक है? पसंद आया? अच्छा लगेगा? हाँ। अब रोज आप अवतरित हुई आत्मा है, आपका अवतार हुआ है इस सृष्टि से, और उसके साथ अनुभव करें मैं शिव शक्ति हूं, मैं अवतार हूं। तीसरा है अमृत वेला याद में जब बैठे तो वतन में बाबा के साथ बैठे, पूरा ग्लोब सामने रखकर देना शुरू करें। अब लेने का संकल्प नहीं, अब देना शुरू कीजिए, अब देवियां बन जाइए, दाता बन जाइए, देवता बन जाइए। चौथी बात, बाबा के मुरलियों का अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट कीजिए दिन भर के लिए, अच्छे अच्छे खुराक बना लें, बार बार वही चिंतन हो, बार बार। आज की मुरली ऐसी थी जिसको मैं 2-3 दिन से गुरुवार से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया, और कल की मुरली की कविता बनाना, गीत बनाना, उसको अभ्यास करना, उसको भी अध्ययन करके आया हूं। तो ये जब तक आप उसमें पूरा नहीं डूबिए कि एक बार मुरली सुनना माना वो आपके कान से निकल गया और पहुंचा ही नहीं, तो थोड़ी मेहनत करके लगन से बाबा की मुरली को अपना सब कुछ बना लीजिए, वही आपका संजीवनी बूटी बन जाए, रामबाण बन जाए, औषधि बन जाए, वो जीवन ज्योति बन जाए, वही लगाम बन जाए। पांचवी बात है कर्मयोग, ऐसे हाथ करें, यहां अनुभव करें कि बाबा यहां पर हैं ऐसे, और फील करें कि बाबा की लाइट के नीचे मैं हूं और मैं इस लाइट के नीचे चल रहा हूं, कोई कार्य कर रहा हूं तो बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। एक ऐसा अभ्यास कि जो चलते फिरते, भोजन करते, कोई काम करते आप ये अभ्यास कर सकते हैं, और यही एक अभ्यास इतना बार बार करें कि अंत में अंत मते सुगति होने के लिए हम जा रहे हैं शरीर से, और बाबा की वो जो लाइट आ रही है वो जो हुक बन गया हो और बाबा मुझे खींच रहे हैं और मैं आत्मा इस शरीर से निकल के जा रही हूं। ये अंतिम अभ्यास, ये पहला और दिन भर का अभ्यास, यही अंतिम अभ्यास बन जाए। जब एक अभ्यास को बार 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 जब करेंगे, बहुत काल का ये अभ्यास आपको सिद्धि प्रदान करेगा। छठी बात, एकांत में बैठना और जो अभ्यास बताया ये जरूर कीजिए। और अंतिम बात है रात को सोने से पहले सबका धन्यवाद दिल से कीजिए। इसका धन्यवाद कर दें, धन्यवाद, हाँ बोलिए थैंक यू, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे साथी, अंतिम जन्म के खटारा गाड़ी, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उम्दा है, बहुत अच्छा है, और धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, वाह वाह, ऐसे भी करके धन्यवाद करो। और एक धन्यवाद सबको जिन्होंने आयोजन किया, आपको यहां पर लाए, सभी गुवाहाटी के और जहां जहां सोनीपत के हैं और हमारे खार के सब भाई बहने आए, सबको एक बार जो भी आए, जो भी बुलाए उनको धन्यवाद कर दे। और अंतिम धन्यवाद प्यारे बाबा को, और दोनों हाथ करके थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और अंतिम अभ्यास एक साथ मेरे साथ बैठ जाए, ये पांचों स्वरूपों का अभ्यास बड़ा हल्का फुल्का, बड़ा अच्छा है, जो मैं प्रायः बताया करता हूं, हमारे साथ कर लें। मैं ज्योति सितारा कीजिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। जोर से लाउडली, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।